नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 22 नवंबर 2019 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, विश्व भर में 80% से ज्यादा किशोर नहीं करते हैं नियमित व्यायाम, किशोरों में बढ़ता आलसीपन बन सकता है बीमारियों का कारण। काबिज फिलिस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियां, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, कहा यूएन प्रवक्ता ने। विश्व बाल दिवस पर बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए फिर से संकल्प लेने की पुकार। खुले में शौच ना जाने और घर में शौचालय होने के क्या है फायदे, जानिएगा एक खास बातचीत में। और मच्छरों से होने वाली डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक नई तकनीक परीक्षण के लिए तैयार। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारी न्यूज़ ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए यूएन न्यूज़ रीडर, जिसमें बाईं ओर भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। किशोर उम्र में बढ़ता आलसपन भविष्य की एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि दुनिया भर में अधिकांश किशोर नियमित रूप से ना तो कसरत करते हैं और ना ही खेलकूद या अन्य शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। अध्ययन दर्शाता है कि 11 से 17 वर्ष की उम्र में 80% से ज्यादा किशोर, यानी हर 5 में से 4 किशोर प्रतिदिन 60 मिनट से भी कम शारीरिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। संगठन का मानना है कि नियमबद्ध ढंग से हर दिन कम से कम 1 घंटा कसरत करने से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। धीमे धीमे भागने, चलने, साइकिल चलाने और सक्रिय रहने की कोशिश करने से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन पर्याप्त व्यायाम न कर पाने के दीर्घकाल में कई दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं और लोगों को कई प्रकार के गैर संचारी और अन्य रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इनमें हृदय की बीमारी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर और कोलोन कैंसर शामिल हैं। शारीरिक सक्रियता से मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है, व्यायाम से सीखने में भी सहयोग मिलता है और डिमेंशिया जैसी बीमारी को होने से रोकना और वजन को सही रख पाना संभव हो पाता है। इस शोध में 146 देशों में स्कूल जाने वाले 16 लाख छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मध्यपूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष संयोजक निकोलाय म्लादिनोफ ने कहा है कि इसराइल द्वारा कब्जा किए हुए फलस्तीनी क्षेत्रों में इसराइली बस्तियां बसाए जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत घोर उल्लंघन है। अमेरिका ने हाल ही में इस संबंध में अपनी नीति बदले जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया था इस मुद्दे पर यूएन के लंबे समय से चले आ रहे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएन का स्पष्ट रूप से मानना है कि फलस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष संयोजक निकोलाय म्लादिनोफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सोमवार को की गई इस घोषणा पर अफसोस जताया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसराइली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं समझता। निकोलाय म्लादिनोफ ने 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का रुख पहले जैसा ही है। मध्यपूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत ने इसराइली बस्तियों को 2 राष्ट्रों के रूप में समाधान निकालने के प्रयासों में और न्यायपूर्ण, दीर्घकालीन व संपूर्ण शांति के रास्ते में एक मुख्य बाधा करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एकतरफा कार्रवाई से गुस्से और निराशा को बढ़ावा मिलता है और ये स्थिति एक टिकाऊ फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की ऐसी संभावनाओं को धूमिल करती है जहां यरूशलम दोनों देशों यानी इसराइल और फिलिस्तीन की राजधानी हो सके। विशेष समन्वयक ने चैम्बर के भीतर राजदूतों को जानकारी देते हुए कहा कि इसराइल और गाजा के भीतर सक्रिय फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच हाल ही में भड़के गंभीर तनाव के कुछ ही दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद की ये बैठक बुलानी पड़ी है। उन्होंने ये माना कि तात्कालिक संकट तो टल गया है, मगर वहाँ स्थिति अब भी बहुत विस्फोटक बनी हुई है। निकोलाय म्लादिनोफ ने चरमपंथियों की गतिविधियों, रॉकेट फायर और इसराइल द्वारा बदले में हवाई हमलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिस संकट की वजह से दोनों तरफ लोग हताहत हुए हैं।
1989 में बाल अधिकारों पर एक संधि वजूद में आई थी, जिसमें बच्चों के अधिकारों को लागू करने के वादे किए गए, जिसे इस वर्ष 30 साल पूरे हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस संधि के वादों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से संकल्प दिखाने की पुकार लगाई गई है। यूनिसेफ के सद्भावना दूत डेविड बेकम ने इस मौके पर कहा कि हम सभी को बच्चों के सपनों की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि भविष्य हमारा नहीं, ये बच्चों की अमानत है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
अनेक देशों में बच्चों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अनुभव साझा करते हुए यूनिसेफ के सद्भावना दूत डेविड बेकम ने कहा कि युवा एक ऐसी पृथ्वी ग्रह की मांग कर रहे हैं जो उनकी और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी कर सके। एक ऐसा ग्रह जहां हमारे संसाधन टिकाऊ हों और जहां हमारे पर्यावरण की हिफाजत हो। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सभी के लिए एक टिकाऊ भविष्य का रास्ता साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा सभी बच्चों का चौतरफा ख्याल रखना। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पिछले 3 दशकों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है, लेकिन रिपोर्ट आगाह भी करती है कि इस प्रगति का लाभ अगर सबसे गरीब बच्चों तक पहुंचाना है तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन इतिहास की सबसे व्यापक और तेजी से अपनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे अब तक 190 से अधिक देशों ने मंजूरी दी है। इसके तहत बाल अवस्था 18 साल तक मानी गई है और इस विशेष समय में बच्चों को सम्मान के साथ बढ़ने, सीखने, खेलने, विकसित होने और पनपने का अधिकार है।
खुले में शौच जाने का अर्थ है जब लोग शौचालय का उपयोग करने की बजाय खुले स्थानों यानी खेतों, जंगलों, झाड़ियों और नदियों में शौच करते हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 67 करोड़ 30 लाख लोग खुले स्थानों पर शौच करते हैं और इनमें से 91% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दक्षिण एशिया में, विशेषकर भारत में, खुले में शौच का चलन एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन हाल ही में इसे खत्म करने की दिशा में प्रगति भी हुई है। इस दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने यूनिसेफ के भारत कार्यालय में जल और स्वच्छता मामलों के विशेषज्ञ मनीष वसुजा से बात की।
खुले में शौच की जो समस्या है वो कितनी गंभीर है, आंकड़े क्या कहते हैं?
भारत में हर साल 1,17,000 बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम हैं वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ डायरिया डिजीज, जो खुले में शौच करना उसमें एक मुख्य कारण है। और ये जो 1,17,000 का आंकड़ा है ये पूरे विश्व का जो आंकड़ा है उसका 20% है। इसी तरह से 38% बच्चे हैं जो स्टंटिंग से ग्रस्त हैं, उसमें भी खुले में शौच करना एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है।
व्यवहार परिवर्तन के लिए आपने किस तरह के कदम उठाए?
व्यवहार परिवर्तन के लिए हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई ऐसे IC कैंपेन चलाए, जिस पर हमने फोकस किया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर, कि लोग आपस में बात करें और बात के ज़रिए इस चीज़ पर ध्यान दें कि किस तरह से हमें लोगों को इसकी महत्व के बारे में बताना है कि ये क्यों ज़रूरी है। अगर मेरे घर में मैं शौचालय का इस्तेमाल करूं और मेरे पूरा जो गांव है वो खुले में शौच मुक्त है, तो मैं हर साल 50,000 रुपया बचा सकता हूं, जो खर्चा अगर मैं खुले में शौच करता हूं तो फिर मैं डॉक्टर के पास वो दूंगा बीमारियों के ऊपर, या मैं शौच स्कूल नहीं अटेंड कर पाऊंगा, या फिर मैं अपने घर में मुझे छुट्टी लेकर बैठना पड़ेगा अगर मैं बीमार हो जाता हूँ। तो ये सब फैक्टर्स अगर ये मैं खर्चे मिलाऊँ तो हर परिवार, एक परिवार साल में करीबन 50,000 रुपया बचाता है शौचालय का उपयोग करके, अगर वो एक खुले में शौच मुक्त गांव में रहता है।
अगर हम साफ सफाई की बात करें तो शौचालय के उपयोग से लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं, किस तरह के सुधार देखने को मिलते हैं?
देखिए, उसमें दो तरीके से मैं कहूँगा कि बदलाव आते हैं। एक कि ये शौचालय सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप उसके चार दीवारी की बात करें, वो आपका एक इज्जत घर है। उसमें आप अगर खुले में नहीं जाते और आप शौचालय में जाते हैं तो आप अपनी इज्जत बचाते हैं, तो उसको इज्जत घर की तरह हम प्रमोट करते हैं। दूसरा, हम उसको एक किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप खुले में शौच करने जाएंगे तो आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो लोग मैक्सिमम लोग भारत में ड्रिंकिंग वाटर की तरह भी यूज़ करते हैं, उसके कॉन्टेमिनेशन होने के बहुत चांसेस हैं, वाटर बॉडीज़ ख़राब हो सकती हैं। अगर आप शौचालय में दो गड्ढे वाले सोखते गड्ढे वाले शौचालय का उपयोग करते हैं तो वो एक अपने आप में एक ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो ये सब चीज़ों पर हम फोकस करते हैं कि कैसे हम हेल्थ को इम्प्रूव करने का मैसेज फोकस करें और साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हम इज्जत किस तरह से इससे बच सकती है कि उसको एक प्रतिष्ठा का एक एस्पिरेशनल चीज़ बनाए टॉयलेट।
ये थे यूनिसेफ के भारत कार्यालय में जल और स्वच्छता मामलों के विशेषज्ञ मनीष वसुजा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि विश्व में तकनीकी विकास से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के भारी बदलाव अभूतपूर्व गति से सामने आए हैं। न्यूयॉर्क में डिजिटल तकनीकों पर एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने तकनीकी बदलाव के नुकसानदेह पहलुओं से बचते हुए सकारात्मक पहलुओं का भरपूर फायदा उठाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। पूरी जानकारी के साथ एक बार फिर महबूब खान।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने न्यूयॉर्क में डिजिटल तकनीकों पर मित्र समूह की पहली बैठक में कहा कि नई तकनीकों, खासतौर से डिजिटल प्रौद्योगिकियों का पहले ही दुनिया पर बड़ा प्रभाव है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, टिकाऊ विकास और मानवाधिकारों पर हमारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रथम 5 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचने में 50 साल लग गए थे, लेकिन डिजिटल तकनीकों के पूरी दुनिया के 3 अरब लोगों तक पहुंचने में इससे आधा समय ही लगा। हालांकि यूएन कई महत्वपूर्ण पहलों पर काम कर रहा है, लेकिन वे काफ़ी नहीं हैं और समन्वित भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सहयोग पर उच्च स्तरीय पैनल ने डिजिटल खाई पाटने, डिजिटल संदर्भों में मानवाधिकारों को मान्यता सुनिश्चित करने, साइबर सुरक्षा को विश्वसनीय बनाने और उसके लिए एक नए वैश्विक आर्किटेक्चर पर सहमति बनाने पर जोर दिया था। इस पैनल के गठन का उद्देश्य सरकारों, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र इन सिफारिशों के लिए पैरोकारों के छोटे समूहों का गठन कर रहा है जो प्रमुख समूहों का नेतृत्व करेंगे। इनमें यूएन के अलावा सरकारें, उद्योग और नागरिक समाज शामिल होंगे जो ऐसी ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जो वास्तव में असरदार हो। डिजिटल तकनीकों की आसान उपलब्धता के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, एंटोनियो गुटेरेश ने ये मानते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर लिए गए निर्णय ये निर्धारित करने में मदद करेंगे कि उनका उपयोग हानि के लिए किया जा रहा है या फिर लाभ के लिए, और किन देशों को ये नुकसान और फायदे मिल रहे हैं।
कई तरह के संक्रमणों से लोगों, जानवरों और पौधों की रक्षा करने में एंटीमाइक्रोबियल अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग और हद से ज्यादा इस्तेमाल उनके बेअसर होने की वजह भी बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां रोगाणुओं ने इन जीवन रक्षक दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित कर लिया और मरीजों पर दवाओं का असर होना बंद हो गया। इसी एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 18 से 24 नवंबर तक विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन में एंटीमाइक्रोबियल कार्यक्रम और मूल्यांकन के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर राजेश भाटिया से बात की।
डॉक्टर भाटिया, ये बताइए कि 18 से 24 नवंबर तक जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक है, इसका क्या मतलब है, क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस?
एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जिनसे हम बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीजेस को ठीक करते आए हैं। पिछले 60-70 सालों में जब से ये दवाएं और एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई हैं, लाखों करोड़ों लोगों को इन्फेक्शियस डिजीजेस या चूत की बीमारियों से निजात मिल सकी है। पर अब क्या हो रहा है कि जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो इन एंटीबायोटिक्स के एक्शन से मर नहीं रहे हैं, और उसका कारण ये है कि इन बैक्टीरिया ने, या जिन्हें हम आम भाषा में जर्म्स कहते हैं, अपने अंदर इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो एक इंसान को एक जर्म से बीमारी होती है, आप उसे एंटीबायोटिक्स की डोज देते हैं, पर उस इंसान की रिकवरी नहीं होती, उस इंसान का पूरा क्योर नहीं होता, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण आज की तारीख में ड्रग रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन बैक्टीरिया में है जो बहुत सी बीमारियां करते हैं।
क्या कारण है जिससे शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, ये बैक्टीरिया ऐसे इस तरह की क्षमता इनकी विकसित हो जाती है, कारण क्या रहते हैं इनके?
देखिए, बड़ा बेसिक कारण तो ये है कि बैक्टीरिया या जर्म्स ने भी जिंदा रहना है, ये उनका एक जिंदा रहने का मैकेनिज्म है। तो वो समय समय पर अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाते रहते हैं जिनसे कि एंटीबायोटिक्स का असर जो है वो उन पर नहीं होता। लेकिन जब उनके ऊपर हम खूब सारी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं जबकि जरूरत नहीं है, तो सिर्फ वो बैक्टीरिया सेलेक्ट हो जाते हैं जिनमें कि वो रेजिस्टेंस होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा एक सेंसिटिव पॉपुलेशन होती है बैक्टीरिया की, वो रिप्लेस हो जाती है एक रेजिस्टेंट पॉपुलेशन से। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज या एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज या एंटीबायोटिक्स का यूज वहां पर जहां नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा ड्राइवर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को सेलेक्ट आउट करके फैलाने के लिए।
तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है? दुनिया भर में समस्या को लेकर किस तरह से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास हो रहे हैं?
देखिए, दुनिया ने तो अब इस चीज को बहुत बड़ी समस्या मान लिया है। रादर बहुत सी इंस्टीट्यूट अब ये कहते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में दुनिया के सामने जो है वो ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जहां पर हम एंटीबायोटिक्स के होने से पहले थे, मींस प्री एंटीबायोटिक इरा में पहुंचने जा रहे हैं। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी आपके सामने? आप एक बहुत अच्छी हार्ट सर्जरी करवाते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं उसका कोई असर नहीं होगा। इस चीज की वजह से अब क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को महंगी दवाइयां लेनी पड़ रही है, बहुत से लोगों को लंबे टाइम तक हॉस्पिटल्स में रहना पड़ रहा है, और ये अब एक चिंता का विषय बन गया है इंटरनेशनल लेवल पर। पिछले 2 साल पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी इस विषय पर बात करी। WHO, FAO और OIE, ये तीनों जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्लोबल एक्शन प्लान 2015 में बनाया, जो सबके सब मेंबर स्टेट्स ने, 194 जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने सबने उसको अप्रूव किया, और सबने ये कहा कि हम 2 साल के अंदर अपने अपने कंट्री के लिए ऐसा ही एक एक्शन प्लान बनाएंगे जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। तो इंडिया में भी हमने अप्रैल 2017 में ये नेशनल एक्शन प्लान बना लिया था, और अब उस नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू हो रहा है।
ये थे खाद्य एवं कृषि संगठन में एंटी माइक्रोबियल कार्यक्रम में तकनीकी सलाहकार डॉक्टर राजेश भाटिया। इस बातचीत का विस्तृत रूप आप हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, पता है news.un.org/hi। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मच्छरों से फैलने वाले डेंगू बुखार से आधी से ज्यादा दुनिया को खतरा है। इसकी गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र इसे जड़ से मिटाने के वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन प्रयासों के तहत लाखों की संख्या में बधिया कीटों स्टराइल इंसेक्ट्स को छोड़े जाने की तैयारी है, जो एक नए परीक्षण का हिस्सा होगा। एक रिपोर्ट के साथ हमारी सहयोगी शिवानी काला।
इस प्रक्रिया को बधिया कीट तकनीक के नाम से जाना जाता है, जिसे दशकों पहले अमेरिका में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से निपटने के प्रयासों के तहत विकसित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के शोधकर्ता पिछले 10 वर्षों से इस तकनीक को मच्छरों के लिए इस्तेमाल में लाने और उसे कारगर बनाने में जुटे हैं। शोधकर्ताओं ने UN स्वास्थ्य एजेंसी के ट्रॉपिकल डिजीजेस कार्यक्रम के साथ काम करते हुए उन देशों के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं जो मच्छर जनित बीमारियों पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बधिया कीट तकनीक एक प्रकार से कीटों के जन्म और उनकी संख्या को नियंत्रण में करने का एक नुस्खा है। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में बधिया नर मच्छर छोड़े जाते हैं जो जंगली नर मच्छरों को पीछे छोड़ते हुए मादा मच्छरों में बांझपन का कारण बनते हैं। उनके अंडे फूट नहीं पाते, जिससे मच्छरों की संख्या को नियंत्रण में लाने में मदद मिलती है। यदि इस तकनीक को लंबे समय के लिए प्रयोग में लाया जाए तो मच्छरों की आबादी को कम और कुछ मामलों में मच्छरों की पूरी संख्या को लक्षित ढंग से खत्म किया जा सकता है।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।